अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियं। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष वैशाख महीने का अंतिम दिवस है आज। और आज के ही दिन जो श्री विग्रह है वृंदावन के अन्यतम सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री विग्रहों में से राधा रमन जी, उनका भी प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव तिथि है। तो आज हम और इसके अतिरिक्त श्रीनिवासाचार्य जी का तिरोभाव है कि आविर्भाव है श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव होना चाहिए। तो हम राधा आविर्भाव तिथि तो राधारमन श्री विग्रह के प्रकट करने वाले जिनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो छह गोस्वामियों में से एक हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में वृंदावन में कुछ विशिष्ट लोगों को भेजा, उसमें छह अन्यतम हैं जिनको छह गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। छह गोस्वामियों में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी एक हैं। तो हम श्री विग्रह के विषय में चर्चा करेंगे, राधा रमन जी के विषय में। इसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में करते हैं। आप लोग इस बात से परिचित होंगे, कम से कम होना चाहिए, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी में गए तो चैतन्य महाप्रभु कुछ ही महीने जगन्नाथपुरी में रुके और फिर चैतन्य महाप्रभु यात्रा किए दक्षिणी भारत की। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, उपक्रम है, जिसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, यात्रा के क्रम में साउथ इंडिया में श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम बहुत बहुत बड़ा, ऐसे वैष्णव का, विशेषकर रामानुजाचार्य जी का जो श्री संप्रदाय का एक तरह से पीठ है, वह मूल स्थान है। तो श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु गए तो स्वाभाविक है, रंगनाथ जी भगवान का वहां पर श्री विग्रह है। मंदिर में जाकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उसी समय, जिस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर में दर्शन ही कर रहे थे, उसी समय उस मंदिर के, उस संप्रदाय के, उस समय के जो अन्यतम सर्वश्रेष्ठ जो आचार्य थे, वेंकट भट्ट गोस्वामी उनका नाम था, उस समय उस संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के अन्यतम सर्वश्रेष्ठ आचार्य, इसके साथ मंदिर के जो व्यवस्था था उसका भी वही देखरेख करते थे। तो वे दर्शन करने के लिए आए। दोनों जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य से, चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से और चैतन्य महाप्रभु के शरीर से कृष्ण प्रेम विकीर्ण हो रहा था। शरीर में चैतन्य महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार उनके पूरे श्री विग्रह पर प्रकट थे। उसको देखकर वो, चूंकि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे वेंकट भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, यद्यपि की उम्र से वो बड़े थे और आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित थे, परंतु वे गृहस्थ थे और चैतन्य महापुरुष सन्यासी के भेष में थे, इसलिए इस गौरव से कि सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, वेंकट भट्ट गोस्वामी प्रणाम किए। थोड़ा सा परिचय हुआ और वेंकट भट्ट गोस्वामी चैतन्य महापुरुष से प्रार्थना किए कि आप सन्यासी हैं, कहीं ना कहीं आपको भोजन करना होता है, भिक्षा ग्रहण करनी है, तो आज दोपहर का जो प्रसादम है आप मेरे घर पर ग्रहण कीजिए, मेरे यहाँ लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट गोस्वामी के उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। वहाँ पर सात नदियों में से एक प्रसिद्ध नदी है कावेरी। दोपहर के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान किए और स्नान करने बाद वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर गए। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर गए तो वेंकट गोस्वामी तो थे ही, उनके एक भाई भी थे, पत्नी थी, उनको एक पुत्र भी था, उसका गोपाल भट्ट नाम था। भट्ट वहां पर ब्राह्मणों की एक सरनेम है, जहाँ शर्मा लिखते हैं, पांडे, तिवारी, चतुर्वेदी लिखते हैं, तो वहां ब्राह्मण जो साउथ इंडिया में होते हैं। तो गोपाल भट्ट लड़के का नाम था, लगभग 8 वर्ष का था। गोपाल भट्ट का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था, 1503 में जन्म हुआ था। कोई कोई 1500 भी बताते हैं, लेकिन ज्यादा वैष्णव 1503 में जन्म हुआ था और 1511 में चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के यहाँ गए थे, श्रीरंगम में गए थे। गोपाल भट्ट का कितना उम्र होना चाहिए? लगभग 8 वर्ष, ठीक, 8 वर्ष का बच्चा था यही गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो जिसके हम चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भिक्षा ग्रहण किए और इसके बाद प्रसादम ग्रहण करने के बाद ये चातुर्मास लगभग प्रारंभ होने ही वाला था। जो चार महीने साधु लोग यात्रा नहीं करते हैं तो चातुर्मास प्रारंभ होने लगा। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप यात्रा पर हैं, परंतु यह पवित्र पुनीत परंपरा है कि चार महीने कोई साधु सन्यासी यात्रा नहीं करते हैं, एक स्थान पर निवास करके वहाँ पर चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं, चार महीने एक जगह रहते हैं। तो आपको चातुर्मास करना ही है तो क्यों नहीं मेरे ही यहाँ रहिए, चार महीने तक आप मेरे ही घर पर रहिए और यही चातुर्मास चार महीने। चैतन्य महाप्रभु यह भी स्वीकार कर लिए। चार महीने तक चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं गए, जब भी उन्हें आग्रह किया था कि प्रतिदिन आप मेरे ही घर प्रसाद लीजिए, लेकिन यह संभव नहीं हो सका कि दूसरे भी बाजू के पड़ोस में ब्राह्मण थे, वो लोग भी आमंत्रित करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे ब्राह्मणों के भी घर पर किसी किसी दिन जाते थे भोजन करने, लेकिन निवास हो गया चैतन्य महाप्रभु का वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पर। और जब चैतन्य महाप्रभु शाम के समय प्रसादम ग्रहण के बाद सोते थे, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु का पाद स्तंभाहन करते थे, मसाज करते थे, खुद पर्सनली करते थे, लेकिन अपने पुत्र को गोपाल भट्ट को भी लगाते थे सेवा में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी लगातार चार महीने प्रतिदिन संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु का चरण संवाहन करते थे, लगातार 120 दिन तक, चार महीने वहां पर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट अभी तो गोस्वामी तो नहीं है, गोपाल भट्ट छोटा सा बच्चा था, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। जब चैतन्य महाप्रभु वहां से चरण चार महीना पूरा हुआ, उनको फर्दर आगे भी साउथ इंडिया की यात्रा करनी थी, तो गोपाल भट्ट भी कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। छोटा बच्चा चार महीने तक रहा था, चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु उसको देखभाल किया था बच्चे का, बहुत कुछ भक्ति की बात बताई थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी यह इच्छा करने लगे कि मैं भी चार महीना साथ रहा हूँ और आपको कोई शिष्य कोई असिस्टेंट की जरूरत पड़ती तो मैं भी साथ चलूंगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के आग्रह को स्वीकार नहीं किए। उन चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि बेटा, जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, इस शरीर में हैं, बढ़िया से माता पिता की सेवा करो, और जब माता जी का पिताजी का शरीर शांत हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उनका निधन हो जाएगा, तो तुम वृंदावन आ जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां रहे चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद, प्रतीक्षा करते रहे। लगभग 1532 में, लगभग 11 में चैतन्य महाप्रभु के साथ मुलाकात हुआ था, और 31 अथवा 32 का 1500 पूरा, तो उनके माता पिता का एक एक करके निधन हुआ। माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार सब कुछ करने के बाद ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की यात्रा किए। 1532 में ये यहाँ पहुँच गए थे, मतलब कितना उम्र रहा होगा, हाँ ठीक है 29 वर्ष के थे, तो वृंदावन में आए। वृंदावन आने के बाद थोड़े ही दिन तक निवास किया, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, घर पर कहा था कि तुम वृंदावन आ जाओ, हम तुमको वहाँ पूरा हमारी मुलाकात होगी। यहाँ आए तो चैतन्य महाप्रभु देखने की तीव्र इच्छा होती थी, दर्शन करना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन में थे, जगन्नाथपुरी में थे, तो इसके बाद थोड़े ही के समय के बाद यह भी पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु 1534 में अप्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समर्पित कर समाप्त करके अपने धाम में चले गए। तो यह तो बड़ी भारी वेदना थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी पुनः नहीं मिल सके, बड़े दुखी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मुक्तिनाथ की गंडकी, मुक्तिनाथ ना नेपाल में है, तुम यात्रा करो और तुमको श्री विग्रह प्राप्त होंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ से नेपाल में गए, गंडकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ जी में गए। गंडकी नदी में, काली गंडकी नदी में एक विशेष क्षेत्र है, खास पूरे गंडकी नदी में नहीं लेकिन कुछ दूर ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान शिला के रूप में निवास करते हैं, पत्थर के रूप में। कथा आप लोग जानते होंगे, तुलसी देवी ने उनको श्राप दिया है कि तुम पत्थर हो जाओ, सब जानते हैं ना, भगवान को श्राप है तो पत्थर रूप में निवास करते हैं। भगवान ही वो शिला के रूप में निवास है, शालिग्राम शिला। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां गए, कुछ दिन तक निवास किए, स्नान किए। एक दिन की बात है, अपने जल पात्र को लेकर कुछ पानी भर रहे थे, कुछ पानी लिए गंडकी नदी से। तो पानी बाहर लाए तो देखे कि उसमें 12 छोटे छोटे भगवान के शालिग्राम शिला गए पानी में। ऐसे वो प्राय नीचे डूबा रहता है, लेकिन वो पानी नीचे ऐसे डुबाए, अपने कमंडलों को जलपात्र को निकाले तो उसमें शिला है। तो उसे तो अपेक्षा नहीं था, पानी तो उन्होंने फिर से डाल दिया, सभी शिला को पानी को पुनः लौटा दिया गंडकी नदी में। दूसरे बार गए तो फिर देखे तो भाई 12 के 12 शिला उसमें आ गए, फिर उन्हें लौटाया, मैंने फेंक दिया, जब जल में छोड़ दिया, पानी को पानी में छोड़ दिया, शालिग्राम शिला भी छोड़ दिया तो डूब गए। फिर तीसरी बार जब कमंडल लगाए तो फिर 12 शिला उसमें कमंडल में आ गए। तो कुछ मिस्टिक टाइप का यह घटना घट रही थी, इसीलिए दैव इच्छा से भगवान की इच्छा समझ कर, भी भगवान है वो जानते थे यहाँ पत्थर के रूप में शिला के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो 12 शिलाओं को लेकर पुनः ब्रज में आए और उन द्वादश जो शिला थे जिसमें एक शिला का नाम रखे थे, 12 शिलाओं के अलग अलग नाम रखे थे, उसमें जो एक शिला था उसका नाम दामोदर शिला रखे थे, भगवान शालिग्राम का दामोदर रखे थे। और उनकी सेवा वैसे ही करते थे, वैसा ही दर्शन करते थे जैसे साक्षात वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, भेद बुद्धि नहीं था। चैतन्य महाप्रभु और शिला में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, कृष्ण में और शिला में किसी प्रकार का भेद नहीं है, भगवान ही शिला के रूप में, कृष्ण ही शिला के रूप में है। इस उत्कट श्रद्धा के साथ आराधना करते थे, ब्रज में आकर निवास करते थे। उसके पूर्व घटना घटी, जब वहां से लौट रहे थे तो यात्रा करते हुए थोड़ा सा डायरेक्ट मुक्तिनाथ से आए थे तो हरिद्वार इत्यादि की यात्रा करते करते हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से वृंदावन के आ रहे थे। तो एक सहारनपुर अभी गांव है, शहर है, वहां गए थे सहारनपुर में। तो सहारनपुर में एक ब्राह्मण थे, विप्र थे, वहां निवास करते थे। उनको कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी, तो साधु देखे, साधु महात्मा आ गए तो आशीर्वाद दे देते, तो कोई पुत्र हो जाता तो अच्छा होता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको, और काल क्रम से उनको एक नहीं दो पुत्र हुए। तो नाम उसको रखा था गोपीनाथ, लड़के का नाम था गोपीनाथ, और दामोदर दो भाई हुए। तो वो वहां पर थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ सेवा पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा वृंदावन में रह रहे थे, शालिग्राम से बढ़िया से पूजा करते थे। ठीक घटना है नृसिंह चतुर्दशी जो कल तिथि थी, तो नृसिंह चतुर्दशी के थोड़ा दिन पहले यहाँ से बहुत बड़े व्यापारी सेठ लोग आए थे और वो लोग दान दे रहे थे, देना चाहते थे, तो खोजते थे कहाँ कोई वैष्णव है, साधु है, महात्मा है, उसको कुछ दान देना है, कपड़ा देना है, पैसा देना है। इसके साथ पता लगाते थे कि वह कोई श्री विग्रह की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, मूर्ति रखा है, तो मूर्ति के लिए भी कुछ श्रृंगार, बांसुरी, जूता, ड्रेस और कुछ सभी ढूंढ ढूंढ कर, एक व्यापारी ढूंढ ढूंढ कौन साधु हैं तो कुछ उनके लिए दान, कुछ उनके श्री विग्रह के लिए दान करते थे। तो उसी क्रम में गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए तो खूब बढ़िया से वस्त्र बना कर लाए थे, छोटे छोटे पोशाक लाए थे, पीताम्बर लाए थे, बांसुरी लाए थे जो भगवान धारण करते हैं, और गोपाल भट्ट को ही भी दान दे दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे कि आप मेरा कोई उपयोग नहीं है, बांसुरी है, खड़ाऊ है, पीताम्बर है, ड्रेस है, विभिन्न प्रकार थे, क्राउन लाए थे छोटा छोटा। गोपाल भट्ट गोस्वामी बताए कि मेरे लिए, मेरे भगवान के लिए कोई काम का चाहिए, आप दूसरे साधु महात्मा को दे दीजिए जो उपयोग कर सकें अपने विग्रह की आराधना के लिए। लेकिन वो व्यापारी लिया नहीं, नहीं आपको पास दे दिया हूं तो रखिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ठीक नृसिंह चतुर्दशी के दिन, बड़ा उनको रिग्रेट हो रहा था, बड़ा खेद हो रहा था कि यदि मेरे पास भी भगवान होते, भगवान को रेगुलर रूप है, त्रिभंग ललित रूप, बंसी विभूषित करा नवनी रदा भात पीताम्बरा अरुण बिंब फलौ धरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, ऐसा भगवान का त्रिभंग ललित रूप। तो उनके मन में हो रहा था कि मेरे पास भी यदि भगवान उस रूप में होते, त्रिभंग ललित कृष्ण होते, तो इन श्रृंगार का उपयोग होता है, इन वस्तुओं से मैं उनका श्रृंगार करता। लेकिन वो तो उनके पास तो शालिग्राम शिला थे, तो ऐसे करते करते सो गए, नींद आ गई। एक इच्छा थी कि हमारे पास भगवान होते त्रिभंग ललित रूप में, सुंदर श्री विग्रह में, तो मैं इन वस्तुओं से उनका श्रृंगार करता, इन सामग्रियों से उनका श्रृंगार करता। सोए सुबह में, प्रभात में ही जग गए, जगने के बाद ऐसा वर्णन है कि जी, और सभी शालिग्राम शिला को एक छोटे से बक्स जैसा पेटी में रखते थे, रखकर पूजा करते थे और फिर शाम के समय उसको बंद कर, सुलाकर बंद कर देते थे, ऊपर से ढक्कन डाल देते थे। वैसे ही रात्रि के समय सोते समय उन्होंने किया, भगवान को सिला, सभी शालिग्राम शिलाओं को, द्वादश शालिग्राम शिलाओं को सुला दिया। भोर में जगे, जमुना जी में स्नान करने गए, स्नान करके जब लौटे तो अल्टर में गए तो उन्होंने देखा कि जो बक्सा था, पेटी था, बंद था, उस वक्त ऐसे खुला हुआ था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या है, कुछ हो सकता है कुछ। उन्होंने दृष्टि जब देखा वहां पर तो उन्होंने देखा कि जो 12 शिलाओं में से जिस शिला का नाम उन्होंने दामोदर रखा था वह शिला नहीं है, लेकिन उसी स्थान पर भगवान इस रूप में, जो मदन मोहन राधा रमन जी इस रूप में हो गए। एग्जैक्ट भगवान की ऊंचाई 11 इंच और थोड़ा सा ज्यादा है, 1/8, 11 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है पूरा विग्रह। तो चूंकि भगवान अब खड़े होते तो अब खड़े होकर बंद नहीं किया जा सकता था, पहले तो ऐसे शालिग्राम शिला थे तो ढक्कन बंद हो जाता था, लेकिन अब खड़े हैं तो उसमें कैसे, तो बड़ी उनकी प्रसन्नता हुई भगवान के श्री विग्रह को उन्होंने देखा जिस रूप में आप लोग देखते हैं, मदन मोहन जी प्रकट हुए तो कितना उनको स्नेह हुआ, कितना प्रेम हुआ। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको प्रतिष्ठित किए, अल्टर प्रतिष्ठित होते स्वयंभू श्री विग्रह है। एक बात अवश्य था कि उन्होंने देखा भगवान के पीठ पर, कंधे और पीठ के बीच में तो शालिग्राम शिला का कुछ अवशिष्ट वहाँ है, अभी भी है, जैसे बैल का सांड का जो होता है हम्प होता है वैसा छोटा सा उसमें रह गया। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज के दिन उनको भगवान को रखे थे नृसिंह चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय भोर में ही, आज पूर्णिमा है, भगवान प्रकट हुए। भगवान तो राधा रमन जी प्रकट हुए ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई राधा रमन जी का दर्शन करता है तो उनके पैरों का दर्शन करता है तो उतना ही अच्छा है कि जैसे मदन मोहन जी का कुछ दर्शन किया, भगवान के पैर देख लिया, मतलब मदन भगवान को तो देख लिया, राधा रमन जी को देख ही लिया, साथ साथ वो देख लिया मदन मोहन जी को और भगवान के चेष्ट को, छाती को, वक्षस्थल को दर्शन किया, तो राधा रमन जी का दर्शन हो गया, इसके साथ गोपीनाथ जी का भी दर्शन हो गया। और उनका यदि सिर मुख को कोई देखता है तो गोविंद देव जी का, तो राधा रमन जी के मंदिर को विग्रह को देखने का एक साथ चार शिव विग्रहों का दर्शन हो जाता है। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और राधा रमन जी तो हैं। तो भगवान ने प्रकट हुए तो उस समय यहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी सुबह में सभी जब वृंदावन के सभी गोस्वामियों को यहाँ के जितने भक्त इकट्ठा हुए सुबह में नामकरण, नाम क्या दिया जाए, तो शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे तो वैष्णवों ने रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में इस विग्रह का नाम रखा गया राधा रमण देव, यह ऑफिशियल नाम है। सब जितने यहाँ पर शीघ्र से गोविंद देव, इसी से इनका नाम है राधा रमन भगवान का। और भगवान तो प्रकट हुए लेकिन श्रीमती राधा रानी तो प्रकट नहीं हुई थी, भगवान अकेले हैं, इसलिए परवर्ती काल में राधा रानी को भी वहाँ की विग्रह की पूजा होती हो गई। आप लोग कभी दर्शन करने जाएंगे तो भगवान के लेफ्ट में छोटा सा एक कपड़े जैसा होता है, उस पर एक चांदी का चंद्रिका जो श्रृंगार इत्यादि में पहना जाता है वह रखा जाता है, चंद्रिका वो चांदी का बना हुआ है, चांदी से निर्मित है, वही श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है, वो चंद्रिका करती है। तो एक तरह से राधा रानी वहाँ है लेकिन विग्रह के रूप में, चंद्रिका के रूप में है। तो राधा रमन जी का श्री विग्रह की पूजा होती है। और जो श्री विग्रह की आराधना का जो शास्त्रीय विधि है, जो स्टैंडर्ड है, तो चूंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी आए थे एक ब्राह्मण परिवार से, श्री रंगम से, सब कुछ पंचरात्र विधि और सब कुछ वैष्णव भागवत विधि को जानते थे, तो पूजा का सबसे उच्च स्तर स्टैंडर्ड राधा रमन जी का श्री विग्रह का है। वहाँ पर श्री विग्रह की आराधना होती है। आप लोग जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म तो 1503 में हुआ था, उसी क्रम में जब पूजा चल ही रही थी, राधा रमन जी की पूजा हो ही रही थी, तो जिस ब्राह्मण परिवार को सहारनपुर में एक विशेष गांव है बाजू में, उस गांव में आशीर्वाद दिया था, तो वहां से जो पुत्र हुआ उनको तो आ गया यहाँ पर गोपीनाथ, नाम रखे थे गोपीनाथ। गोपीनाथ लड़का आया तो पूछा कि आप कौन है, नहीं जानते थे, तो लड़के ने बताया कि ऐसे हमारे पिताजी को आपने आशीर्वाद दिया था और आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, तो पिताजी ने हमको आपकी सेवा में भेज दिया। तो वो लड़का आ गया, फिर दूसरा लड़का था दामोदर, वह भी आ गया, तो दोनों भाई आ गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन दोनों बच्चों को दीक्षा दिया, दोनों पुत्र के, तो गोपीनाथ तो ब्रह्मचारी निकला, वो विवाह नहीं किया, लेकिन दामोदर जो दूसरा बच्चा था, उसका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, तो वो जो दूसरा लड़का था वह सेवा का भार संभाला। गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव 1578 78 में हुआ, इसमें लगभग 75 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य लीला में, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, उनका तिरोभाव हुआ। इसके बाद जो दामोदर जो बच्चा था उसका वह सेवा का दायित्व लिया, और इसके बाद वह भी लड़का था, इसको भी तीन लड़के हुए तो उन्होंने बट गया। फिर इस तरह से वंश परंपरा से अद्यावधि भी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दिया था प्रथम सेट में दो शिष्यों को, उसमें तो एक शिष्य दामोदर जो सहारनपुर का रहने वाला था, जिसका जन्म सहारनपुर में हुआ था, उसी की वंश परंपरा के लोग इसके उत्तराधिकारी हैं। आज जो यहाँ पर पूजा होती है तो उसी परिवार के अनुसार पर उन्हों पटा हुआ डेट है, क्योंकि कई लड़के हुए बाद में। ऐसे आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना की और यहाँ पर श्री विग्रह को भी इंट्रोड्यूस किया गया, तो प्रभुपाद जी बार बार यह चाहते थे कि इस्कॉन में जो श्री विग्रह की आराधना को स्टैंडर्ड है, जो विधि है, वो हम लोगों को सीखना चाहिए, वहाँ से प्रेरणा लेना चाहिए कैसे वहाँ पर राधा रमन जी का मंदिर से, तो राधा रमन जी के मंदिर के स्टाइल पर ही हम लोगों के यहाँ पर श्री विग्रह की आराधना होती है, वही विधि वही लोग बताते हैं उनके अनुसार होती है। इसके बाद आज रसिकानंद जी का भी है तिथि है, आविर्भाव तिथि है, सॉरी रसिका श्रीनिवास, तो श्रीनिवास जो लड़का था, श्रीनिवास भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, तो तीन शिष्य गोपीनाथ, दामोदर और श्रीनिवास। श्रीनिवास इतना ही था नाम था, बाद में जीव गोस्वामी ने इनको आचार्य पद से प्रतिष्ठित किया, यह उपाधि दिया जीव गोस्वामी ने, तो पूरा नाम हुआ श्रीनिवासाचार्य, तो आचार्य शब्द से प्रतिष्ठित किया वो समाज उपाधि दिया जीव गोस्वामी ने। आप लोग जानते होंगे ये श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद और तीसरे कौन है, नरोत्तम, इन तीनों ने, यद्यपि कि श्रीनिवास ने दीक्षा लिया गोपाल भट्ट गोस्वामी से, लेकिन वो भी संरक्षण में हो गए जीव गोस्वामी का, और जीव गोस्वामी के साथ रहकर ही वो और सब अध्ययन किए, उनके विषय में श्रीनिवास के विषय में भी यह प्रचलित कथा है कि आप लोग मायापुर गए होंगे, तो मायापुर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम कोने पर एक स्थान है अग्रद्वीप, तो अग्रद्वीप में एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला काल में चैतन्य महाप्रभु अन्यतम एक भक्त थे, चैतन्य दास नाम था, किसी दैव योग से चैतन्य दास को मन में कुछ दिन के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, उसमें उनको पुत्र प्राप्ति की कामना होने लगी, हमको एक पुत्र होता है, ऐसे प्राय वैष्णव लोग पुत्र की कामना कर उतना विचलित नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं उनके पता नहीं क्या उनके मन में आने लगा कि हमको भी एक पुत्र होता तो अच्छा होता। चैतन्य महापुरुष के भक्त थे, तो इस आशा से कि अब चैतन्य महापुरुष से जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमको पुत्र होना चाहिए, तो चैतन्य जगन्नाथपुरी गए, वहां पर चैतन्य महापुरुष को प्रणाम किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया वहां पर, और पार्षदों को जो चैतन्य महापुरुष के एसोसिएट सर का दर्शन किया, मिलना हुआ, प्रणाम किया, इन्होंने कहा नहीं, इच्छा तो थी कि मांगना है कि हमको भगवान एक पुत्र चाहिए, लेकिन चैतन्य महापुरुष से कुछ कहा नहीं, सभी भक्त लोग बैठे थे, तो चैतन्य महापुरुष ने कह दिया कि ठीक है आप आए हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। चैतन्य महापुरुष ने कहा आपकी जो मनोकामना है, वैष्णव लोग पूछने लगे कि अरे कौन सा मनोकामना लेकर आए हैं, चैतन्य महापुरुष इतना है कि आपके मनोकामना की पूर्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरा हो जाएगा, क्या मनोकामना, उनसे पूछने लगे रहे क्या मनोकामना करके आए, चैतन्य महापुरुष से पूछने लगे कौन सी मनोकामना की पूर्ति होने वाली है, तो चैतन्य दास तो इम्प्रेस हो रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं पुत्र की प्राप्ति की कामना से आया था। तो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट आशीर्वाद दे ही दिए। घर लौट कर गए तो सचमुच पुत्र हुआ। तो और लोग भी वैष्णव लोग उस क्षेत्र में, बहुत वैष्णव रघुनंदन इत्यादि उधर के रहन मायापुर के भक्त सब इकट्ठा हो गए और सबने मिल कर इनका नाम श्रीनिवास रखा था। श्रीनिवास नाम दिया गया। इसके बाद श्रीनिवास जानते थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है। तो माता पिता की खूब सेवा करते थे, माता पिता से आज्ञा लिए गए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, जिसके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है भगवान को एक बार देखना चाहिए, तो जगन्नाथपुर में है। तो श्रीनिवास गए वहाँ पर, चल दिए जगन्नाथपुरी के लिए। अब हमें भौगोलिक रूप से पता नहीं है किस जगह पर है, जाजी ग्राम उसके निकट पहुंचे तो उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हो गया, वो अंतरिक्ष में चले गए, दर्शन नहीं हुआ। अभी रास्ते में थे, जाना था चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे, तब बीच रास्ते से ही कुछ दिन तक पता लगा चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्धित हो गए, नित्य लीला समाप्त कर दिए, यहाँ पर भौम लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए। तो जैसे तैसे रोते हुए आंसुओं को पोंछते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। और अन्य भक्त थे, सार्वभौम भट्टाचार्य और जितने भक्त थे वो तो से उन्होंने सांत्वना दिया। फिर रोते रहे और बड़े वो दुख में थे। फिर कुछ दिन तक वहाँ जगन्नाथपुरी में रहने के, भगवान का दर्शन करने के बाद पुनः नवद्वीप मतलब अग्रद्वीप में आ गए, नवद्वीप में आ गए। वहाँ पर माता पिता की सेवा की। इसके बाद वहाँ से पुनः वह चल दिए वृंदावन के लिए, माता पिता से आज्ञा लिए। और आज्ञा लेने के बाद नहीं, पहले वहाँ रहते थे तो पहले पिताजी का निधन हो गया। जब वो लौट कर आए थे तो पिताजी का निधन हो गया, तो अपनी माँ को लेकर अपने नाना के गांव, मामा के गांव में रहने लगे। वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किए। फिर वहाँ पर उनका मन नहीं लगता था बहुत दिन तक, सही वैष्णव ने कि वृंदावन को देखना है, वृंदावन को। तो चैतन्य महाप्रभु ही एक दिन वो सोए थे तो सोच रहे थे कि क्या करना है पुनः, तो उन्होंने वहाँ पर स्वप्न में देखा, स्वप्न में जगन्नाथ जी का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, और इसके बाद जितने राय रामानंद जितने सभी लोग पार्षद सबका उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया था। और फिर नाना गांव पर रहते ही अब मन नहीं लगता था, वृंदावन में जाना है जाना है, तो सभी से आज्ञा लेकर वहां से अग्रद्वीप से पहले वो काटवा आए, वृंदावन के लिए आना है तो काटवा आए। काटवा से वो एक चक्रा ग्राम, नित्यानंद प्रभु का जो गांव है। हाँ, तो एक बात हमने छोड़ दिया कि जब जगन्नाथपुरी से लौटे थे तो चैतन्य महाप्रभु का तो दर्शन नहीं हुआ, पर अपर कोट था, यहाँ आए तो फिर वो दर्शन करना चाहते नित्यानंद प्रभु का। यहाँ गांव अग्रद्वीप में पहुंचे थे तब तो नित्यानंद प्रभु का भी तुरोधान हो गया नित्यानंद। तो लेकिन फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया तो नित्यानंद प्रभु भी दर्शन दिए, लेकिन स्वप्न दर्शन दिए। और इसके बाद वो वहाँ से वृंदावन आए, ब्रज में, ब्रज में श्रीनिवास आए। यहाँ पर आने के बाद तो वे मिले थे गोपाल भट्ट गोस्वामी से, गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, जीव गोस्वामी के संरक्षण में वो रहे। फिर उन्होंने ही, आप जानते जीव गोस्वामी ने उनको आचार्य पद से प्रतिष्ठित किया, नरोत्तम दास को ठाकुर, तीनों को अलग थोड़ा सा नाम जीव गोस्वामी ने चेंज कर दिया। श्यामानंद का नाम था दुखी, दुखी कृष्ण, तो उनको श्यामानंद कर दिया। और नरोत्तम नाम था नरोत्तम ठाकुर, ठाकुर पद भी जीव गोस्वामी ने दिया और इनको आचार्य। यहाँ रहते थे बहुत बढ़िया से निवास किए और आप लोग यह बात बढ़िया से जानते होंगे, कम से कम जानना चाहिए कि और तो बहुत से है कैसे कैसे ब्रज में निवास किए, कहाँ किए, परवर्ती काल में फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और यहाँ तक रघुनाथ दास गोस्वामी का भी दुर्भाव होगा, वो भी चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी भी नहीं थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय राधा कुंड पर कुछ दिन तक निवास किए, यहाँ पर बढ़िया से अध्ययन किए जी गोस्वामी। इसके बाद गोस्वामियों जो ग्रंथों की रचना की थी तो उस ग्रंथ के को संग्रह किया ये तीनों ने, नरोत्तम दास, श्यामानंद और श्रीनिवास, और एक व्यवस्था की एक बैलगाड़ी पर सभी पुस्तकों को, महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर कि जाना है बंगाल, उधर जाना है, नवद्वीप में जाना है, चाहे जगन्नाथपुरी में पुस्तकों का वितरण करना है, तो बैलगाड़ी पर लेकर तीनों मिलकर ग्रंथ ले जा रहे थे प्रचार करते हुए। रास्ते में गए तो एक जगह था, शायद वो अभी झारखंड में अथवा उड़ीसा में, जब पहुंच गए तो उस राज्य में एक जंगल में चोर रहता था, राजा था, दस्युराज राजा था, लेकिन वो जंगली लोगों का राजा था, वो चोरी की प्रवृत्ति थी। और जब ये लोग बैलगाड़ी पर पुस्तक लेकर जा रहे थे तो कुछ ज्योतिषों ने उस ज्योतिष लोगों से संपर्क किया कि ये लोग यात्रा कर रहे थे इस बैलगाड़ी में क्या, तो ज्योतिषों ने कुछ कैलकुलेशन गलत निकला है, वो कहे कि अरे इसमें तो बहा रत्न, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इस गाड़ी पर यात्री लोग लेकर जा रहे हैं तो बहुमूल्य अन्यतम रत्न इसमें, उसने इतना ही बता दिया, यह नहीं बताया कि है क्या, बता दिया कि अब इससे अनमोल रत्न कुछ हो ही नहीं सकता है। तो राजा था, जंगल में निवास करता था, उसने मैनेज किया एक दिन बैलगाड़ी को छोड़कर जंगल में एक जगह बैल को अलग रख दिए थे, वो लोग रात को सोए भी थे, जब जगे तो सब नदारत थे, एक भी पुस्तक उसमें नहीं, चुरा कर ले गया सभी, वो समझता था कि इसमें रत्न खजाने, अपने यहां जाकर खोला तो ये तो उसके लिए तो यूजलेस, उस मतलब ही नहीं निकलता है, वही संस्कृत में लिखा हुआ था कुछ काम का नहीं है, तो अपने ज्योतिषों को खूब डांटा है, मूर्ख कहेंगे तुमने अपराध हमसे करा, चोरी कराया, साधु महात्माओं का हमने एक तरह से यात्रियों को लूट लिया और फायदा भी नहीं हुआ, तो ये रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप हो रहा था, लेकिन आखिर चोरी किया है तो अपने को कहना भी नहीं चाहता था कि मैंने चोरी, पता लग जाएगा तो भाई चोरी किया है कम से कम, ये तो गलत सिद्ध होगा। और कुछ लोग जाते थे तो आजू बाजू कुछ लोग उनसे परिचय हो गए थे, इन लोगों से नरोत्तम दास ठाकुर से, श्रीनिवास सर, वो लोग जान, गांव वाले जान के एक साधु महात्मा है, तो वैसे भी पुस्तक चोरी गई है और वह चुराया है, तो ऐसे पुस्तक वहां तक पहुंच गए, खबर वहां तक पहुंच गई, और उन ब्राह्मणों ने, भक्तों ने बताया कि राजा का स्वभाव चोरी का है, शायद वही चोरी किया होगा, ये लोग कुछ क्लू मिला रहे थे कि आगे पुस्तक कौन चुराया लेगा, इतने बड़े लोग हैं, चोर तो लोग निवास कर, राजा ही चुराया होगा। अंत में जैसे तैसे पहुंचते पहुंचते राजा के पास भी पहुंच गया, लोग कोसने लगे कि अरे मूर्ख कहीं का, कुछ लोग कहते थे कि साधु महात्मा है बेचारे की पुस्तक, उसको सुना कि साधु महात्मा है तो उसके बड़ी श्रद्धा हुई, भाई हमने गलती किया, हम लोग को दर्शन होना चाहिए, तो मिला उन लोगों से बाद में, वो तो छित्री भी हो गए थे, और पुस्तकों को लौटा दिया, क्षमा याचना किया कि हमसे बड़ी भूल हुई, हमने अब बता दिया कि हम तो कोई रत्न समझ कर, कोई सोना चांदी समझ कर चोरी किया था। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य पुनः यात्रा करते हुए वहां से गांव में भी गए थे, और श्रीनिवास आचार्य जी गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार किए थे बाद में प्रवृत्ति काल में, तो श्रीनिवास आचार्य के समय विशेष करके श्री विग्रह के विषय में राधा रमन जी का आज प्राकट्य तिथि है, ये अन्यतम विग्रह है, आप लोग जानते हैं स्वयं स्वयं प्रकट श्री विग्रह। यहाँ के जो मूल जितने विग्रह हैं, गोविंद देव जी जो प्रकट हुए थे, बजनाभदरा स्थापित गोविंद देव जी का श्री विग्रह, मदन मोहन जी का, राधा दामोदर का, गोपीनाथ जी का, जितने विग्रह थे औरंगजेब के आक्रमण के समय सभी विग्रहों को यहाँ से जयपुर भेज दिया गया। परंतु राधारमन जी मंदिर, राधारमन का श्री विग्रह और मूल जो वृंदा देवी का जो श्री विग्रह है, केवल दो श्री विग्रह अभी भी ब्रज में है। स्वयं प्रकट स्वयंभू जी से स्वयं प्रकट श्री विग्रह तो वृंदा देवी का है जो काम वन में है, और ये राधारमन जी का यहाँ पर श्री विग्रह स्वयं प्रकट भगवान। इस विग्रह का कोई बनाने वाला नहीं है, कोई इसका स्वयं तो सबसे महत्वपूर्ण श्री विग्रह है। और ये प्रकट हुआ था 1542 में, ये श्री विग्रह जो वर्ष था, एग्जैक्ट उस स्थल तिथि थे 21 मई 1542। उसमें थोड़ा सा अभी तो आज 21 दिन बाद उस जो वह तिथि आई थी, 21 मई को उस बार यह पूर्णिमा तिथि आई थी, जो इसको वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, आप लोग जानते हैं बलराम जी ब्रज में आए थे लौट के, तो यहाँ पर 2 महीने बलराम जी निवास किए थे ब्रज में, और प्रतिदिन एक गोपियों का एक विशिष्ट ग्रुप है जिनके साथ वो रासलीला किए थे। जिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रासलीला किया था, उन गोपियों में कोई भी गोपी बलराम जी के साथ रासलीला में नहीं थी। कुछ नाग कन्याएं थीं, नाग लोक के सर्पों की लड़कियां, वो भी गोपी के रूप में उनका जन्म हुआ था, तो नाग कन्याएं जो गोपी के रूप में ब्रज में जिनका जन्म हुआ था, उन गोपियों के साथ बलराम जी ने लगातार 2 महीने तक रासलीला किया था, प्रत्येक रात्रि को करते थे। और उस लीला का महा रासलीला जैसा बलराम जी के साथ जो राम घाट एक जगह है शेरगढ़ के नजदीक जमुना जी के तट पर, तो आज ही के दिन बलराम जी ने विशेष रूप से और अंतिम रासलीला नाग कन्याओं के साथ जिनका गोपियों के रूप में जन्म हुआ था उनके साथ लीला किया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। और आज के दिन भगवान का जो है गर्मी का मौसम है, इसलिए स्थलिल विहार जल में गर्मी के अवसर दिन में विशेषकर जो जल क्रीड़ा इसे कहते हैं, जल में भगवान गोपियों के साथ गोप सखाओं के साथ विहार करते हैं। आज का तिथि उसके लिए भी, आज महाराज बता रहे थे अनाउंसमेंट, उन्हें सलिल विहार कहा। अच्छा, सलिल मतलब पानी, जल मतलब जमुना जी में भगवान आज के दिन जमुना जी में बहुत बढ़िया से विहार करते हैं। और आज की तिथि है कि ऐसे तो अच्छा होता हुआ होता चाहे होगा कि रात्रि के समय वृंदावन की अथवा गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है रात्रि के समय। रास पूर्णिमा होता है, दी रास पूर्णिमा, उस दिन भी परिक्रमा होती है, लेकिन आज के दिन कभी परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है, लेकिन रात्रि के समय जब पूर्ण चंद्रमा उदित रहते हैं आकाश में, तो वृंदावन की यात्रा, ब्रज की यात्रा अथवा गिरिराज की यात्रा करना बहुत बहुत अच्छा समझा जाता है। ऐसे अपेक्षा की जाती है कि भक्त लोग भगवान के रास लीला का स्मरण करते हुए मुंह से भगवान के नाम का जप करते हुए और मन से भगवान की रास लीला का स्मरण करते हुए कि इन्हीं वनों में, इसी वन में जहाँ गोपियों के साथ भगवान रात्रि के समय रास लीला कर रहे होंगे, करते हैं, उस समय परिक्रमा करना बहुत अच्छा माना जाता है। यह जो वृंदावन का क्षेत्र है, इसे पंचकोसी जो परिक्रमा मार्ग है, तो यहाँ पर एक बंसी बट नाम का स्थान है। ब्रज में 16 विशिष्ट बट वृक्ष हैं, 16 हैं कुछ है, उसमें से यह एक है। बंसी वट है, श्रृंगार वट है, अक्षय वट है, और बहुत से वट हैं। तो 16 में से एक जो विशिष्ट वट वृक्ष है, वट का वृक्ष है बंसी वट, तो उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान खड़ा होकर बंसी वादन संध्या के समय किए थे, जब चंद्रमा का चंद्र उदित हो रहे थे। तो गोपियों का जन्म तो पूरे ब्रज में फैली हुई थी, कहाँ कहाँ जन्म हुआ था, और इसी स्थान पर सभी गोपियाँ एकत्रित हुई थी। भगवान वहाँ पर बंसी बजाए थे, सभी गोपियाँ एकत्रित हुई थी और रासलीला प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो रासलीला हुई तो वह ब्रह्मा की रात्रि के बराबर, ब्रह्मा जी का एक दिन जितना उतनी बड़ी रात्रि थी, इसलिए ब्रज के सभी वनों में सभी जगह रासलीला हुई है। लेकिन उस रासलीला में यह जो है तो सेवा कुंज से कहा जाता है, तो पंचकोशी परिक्रमा का वृंदावन है, यह अन्यतम स्थान है। इसी स्थान पर वो शरद पूर्णिमा के दिन, रासलीला के दिन भगवान बंसी बजाए थे और सभी गोपियां यहाँ पर एकत्रित हुई थी, इसलिए अभी एक अन्यतम। इसके साथ मंदिरों के सभी विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, लेकिन इस श्री विग्रह का, राधा रमन जी का दर्शन करना विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए। अन्यतम विग्रह है, अभी और सब मूल विग्रह चले गए, लेकिन ये भगवान छोटे थे तो इनको छिपाने में आसानी रहा, बड़े विग्रह उनको छिपाया नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान, और उस समय मंदिर भी नहीं बना था, तो जैसे जैसे गोस्वामी लोग यहाँ के लिए भक्त लोग सक्षम हो सके, भगवान को छिपा लिए और छिपा कर ब्रज में ही वृंदावन में रखे। आज दर्शन करना चाहिए, ठीक है, हम इतना ही कहते हैं। और कुछ प्रश्न है तो कोई, तो राधा श्याम सुंदर मूल विग्रह यहाँ नहीं है, मूल विग्रह राधा श्याम सुंदर भी जयपुर में ही है, वो भी शंभू विग्रह है, लेकिन यहाँ जो प्रतिष्ठित विग्रह है वो सभी विग्रह यहाँ से चले गए हैं, जयपुर में चले, यहाँ नहीं है, मतलब ब्रज में केवल ऐसे वृंदा देवी जो कामवर में है और सर गोस्वामी है, ऐसे बांके बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी भी हैं, वो भी संत संत प्रकट श्री विग्रह हैं, और इस समय बांके बिहारी भी अन्यतम श्री विग्रह में से हैं। राधा श्याम सुंदर का मूल विग्रह यहाँ नहीं है। कौन बांके बिहारी भी मूल विग्रह नहीं है? अच्छा, तो केवल राधा रमन जी हैं, ठीक है, धन्यवाद। ओके ठीक है, ग्रंथराज श्री राधा रमन जी की, श्रील प्रभुपाद की।